कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय धन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामनि गौरात्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्री कृष्ण बलराम मंदिर के बलराम हाल में प्रातः काल के भागवत के सत्संग में। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 17वां अध्याय और अध्याय का नाम है पृथु महाराज पृथ्वी के ऊपर कुपित हुए। पृथु महाराज पृथ्वी के ऊपर कुपित हुए ये अध्याय का नाम है। जो हम सुनते आ रहे हैं अभी तक वो ऐसे है कि द्रुवंश में महाराज पृथु भगवान के अवतार हैं। ध्रुव वंश में पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं और पृथु महाराज का प्रकट्य वेण के शरीर के दोनों सीधे हाथ के मंथन से पृथु महाराज और उल्टे हाथ के मंथन से अर्ची का प्रकट्य हुआ है, इसलिए दोनों अयोनिज हैं, दोनों माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए हैं। और ऐसा अद्भुत इनका प्रकट्य हुआ तो सारे देवताओं ने आकर उनको उपहार दिए, गिफ्ट दिए और सारे ऋषि लोगों ने चारण को, गंधर्व को, सूत को, मागध को कहा कि इसके गुणगान करो और पृथु महाराज को अभिषेक करके राजा बनाए। पृथु महाराज जैसे राज सिंहासन के ऊपर बैठे तो प्रजा ने पृथु महाराज को प्रार्थना की कि महाराज आप इतने इतने योग्य राजा हैं, फिर भी हम प्रजा बहुत भूखे हैं, मैं प्रयास करते हैं लेकिन पृथ्वी अन्न का उत्पादन नहीं करती, तो प्रजा के संकट को पुत्र के संकट के समान समझने वाले पृथु महाराज ने पृथ्वी को दंडित करने के लिए अपने रथ के ऊपर पृथु महाराज आरूढ़ हुए, सवार हुए, हाथ में धनुष बाण दिव्य लिया जो देवताओं ने उनको दिया था और पृथु महाराज ने धरती के ऊपर बाण का अनुसंधान किया और पृथ्वी भयभीत होके पृथ्वी अपनी देवताई स्वरूप में आ गई। पृथ्वी का देवताई स्वरूप क्या है? गाय। पृथ्वी भौतिक दृष्टि से तो धरती दिखती है, पहाड़ पर्वत नदियां बहती हुई दिखती हैं, लेकिन देवी के रूप में पृथ्वी का स्वरूप है गाय, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप में पृथ्वी विष्णु पत्नी है। पृथ्वी विष्णु पत्नी भूदेवी, ये भूदेवी के नाम से भगवान विष्णु की श्रीदेवी भूदेवी, तो भूदेवी विष्णु पत्नी है। और वैसे भी आसन पे बैठते हैं तो आसन के लिए मंत्र पढ़ते हैं, पृथ्वी त्वा धृता लोका, आप सारे लोकों को धारण करती हैं, विष्णु पत्नी तो हमारी माँ है, वो पिता है। तो ऐसे दिखता है कि माता अगर बच्चों का पालन नहीं करे तो पिता कुपित होते हैं, तो पृथ्वी विष्णु पत्नी है और पृथु महाराज विष्णु भगवान के ही अंश अवतार हैं, उसके ही शक्ति अवेश अवतार हैं। तो पृथु महाराज ने जब बाण का अनुसंधान किया तो पृथ्वी गाय के रूप में भागने लगी और गाय का रूप इसलिए धारण किया कि गाय को तो कोई वध नहीं करता है, गाय अवध्य है और फिर स्त्री लिंग है, उसके ऊपर और दया आती है तो पृथु महाराज नहीं मारेंगे। लेकिन पृथु महाराज समझ गए कि ये पृथ्वी है और ये मुझसे भयभीत होके भाग रही है, तो पृथु महाराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तो गाय ने रुक कर पृथु महाराज से बोलना शुरू किया कि मैंने कौन सा अपराध किया, मुझे क्यों मार रहे हो, और वैसे भी गाय तो अवध्य है, आप धर्म के राजा हैं, आप धर्म को जानते हैं, मैं स्त्री के रूप में हूं, आप मुझे कैसे वध कर सकते हैं, मैंने कौन सा पाप किया है। जब पृथ्वी ने ये कहा तो पृथु महाराज ने ये श्लोक बोला और तीन चार श्लोकों में पृथ्वी का दोष क्या है, क्या पृथ्वी ने पाप किया है, ये पृथु महाराज पृथ्वी को बताएंगे कि तुमने ये अपराध किया है और इसलिए मैं आपको दंड देना चाहता हूं। और जब पृथु महाराज की बात पृथ्वी सुनेगी और फिर पृथ्वी अपना पृथु महाराज फिर भी कुपित रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, तो पृथ्वी फिर हाथ जोड़ के कहेगी कि आप जानते हैं मेरे अंदर जितने भी ब्रह्मा जी के उत्पत्ति उत्पन्न किए हुए जो बीज हैं, अन्न धान है, जो सबके भोजन का साधन है, वो यहाँ बहुत पापी लोग, अधर्मी लोग, आध्यात्मिक रहित लोगों के खाने के कारण मैंने उसको छुपा दिया और बहुत समय छुपे रहे मेरे पेट में, इसलिए बिगड़ गए हैं। और राजा भी बहुत बड़े अपराधी थे, आतिताई थे, इसलिए मैंने ये देना बंद कर दिया। तो अब क्या करना चाहिए? बोले अब मैं गाय हूं, आप मुझसे निकाल लीजिए दूध, लेकिन मैं दूध तब देती हूं जब कोई बछड़ा होता है, क्योंकि मेरा प्रेम बछड़े से होता है। कोई बछड़ा बनेगा, कोई पात्र बनेगा जिसके अंदर मेरा आप दूध रखेंगे, तो मैं आपके प्रजा के पालन के लिए सारी औषधियां दे दूंगी। और तब पृथु महाराज का क्रोध शांत हुआ और पृथु महाराज ने पहले ही स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, अपने दोनों हाथों को ऐसे पात्र बनाया और गाय से सारे मानव के लिए जो भी आवश्यक अन्न धान फल फूल है उसको गाय पृथ्वी के रूप में गाय से प्राप्त किया। और ये देख के सारे देवताओं ने देखा कि सबके लिए जो चीज आवश्यक है वो सब पृथ्वी देती है, तो देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना दिया, ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना दिया, ऐसे सब जीवों ने अपनी आजीविका के लिए जो चीजें चाहिए वो सब धरती माता से प्राप्त की। तो ऐसे ये कथा आगे चलेगी। आज के श्लोक में पृथु महाराज पृथ्वी का दोष बता रहे हैं, तो आइए इस श्लोक की आवृत्ति कीजिए। ये श्लोक पृथु महाराज और पृथ्वी के बीच में संवाद है और आज पृथु महाराज बोलेंगे। पृथुर्वाचा वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छसासं प्राणमुखीं भागं ब्रहीषीया वृङ्क्ते न तनोति च नो वसु। पृथुर्वाच वसुधे त्वां वदिष्यामि मशासं प्राणमुखीं भागं ब्रहीषीया वृङ्क्ते न तनोति च नो वसु। पृथुर्वाच वसुधे त्वां वदिष्यामि मशासं प्राणमुखीं भागं ब्रहशीया वृङ्क्ते न तनोति च नो वसु। पृथुर्वाच वसुधे त्वां वदिष्यामि यहं मशासं मुखे
वसुदेवां
प्राणमुखीं वदिष्येतां वदिष्यामि मशासं प्राणमुखीं। माताजी
पृथुर्वाच
वसुधे त्वां वदिष्यामि प्राणमुखीं भागं ब्रहीषीया वृङ्क्ते पृथुर्वाच वसुधे त्वां वदिष्यामि मच्छसासं प्राणमुखीं भावं बृहंसि आवृङ्क्ते नातनोति यावसु प्रथुर्वाच वसुधे त्वां वदिष्यामि मच्छासन पराणिते भावं बृहंसि आवृङ्क्ते प्रथुर्वाच। सो ये पृथु महाराज के वचन है। पृथु महाराज कह रहे हैं पृथ्वी को, क्या कह रहे हैं? वसुधे त्वाम अहम वदिष्यामि। वसुधे का मतलब हे पृथ्वी, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। क्यों मार देंगे? तो कहते हैं मशासन प्राण मुखिम, मेरे आदेश का उल्लंघन कर रही हो। मशासन, शासन का मतलब आदेश, मैंने आपको आदेश किया और आप उसका उल्लंघन कर रही है, तो मैं क्यों आपको मारूंगा? क्योंकि राजा के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। वैसे राजा में विष्णु का अंश होता है और पृथ्वी, पृथ्वी विष्णु पत्नी है जिसका पालन राजा करता है, तो उसको उसका आदेश का पालन करना चाहिए। नहीं कर रही हो पालन, इसलिए मैं तो आपका वध कर दूंगा। अब दोष क्या है मेरा? एक दोष ये है कि मेरे आदेश का पालन नहीं कर रही हूं। दूसरा दोष बताते हैं भागम ब्रह्मसी या वृणोति। ब्रह्मसी, आप एक राजा का नाम इससे इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। पृथु वंश में एक राजा आएगा, उसका नाम क्या है? प्राचीन बरहिष्यत। वो बरहिष्यत शब्द, यही बरहिष्यत शब्द है, इसको देखो, बरहिषिम। बरहिषिम का अर्थ है यज्ञ, और वो राजा केवल यज्ञ ही करता था, तो उसका नाम ही बरहिष्यत हो गया। तो इतना यज्ञ करता था कि उसका नाम ही बरहिष्यत हो गया। तो बरहिषिम का मतलब यज्ञ में, भागम का मतलब भाग, वृणोति का मतलब उसको तो ले लेती हो। जब हमारी प्रजा यज्ञ करती है तो पृथ्वी का भी भाग होता है, देवी के रूप में देवता हो आप, तो इंद्र का भाग इंद्र को मिलता है, वरुण का वरुण को मिलता है, पृथ्वी आपको भाग तो मिलता है। आप भाग तो अपना लेती हो, न तनोती, और वापस में उपज तो देती नहीं हो। यह दूसरा आपका दोष है। यज्ञ का भाग तो खा लेती हो, ग्रहण कर लेती हो, लेकिन वापस प्रजा के लिए अन्न का उपादान नहीं करती हो। न तनोती वसु, आप अंदर से अन्न का उपादान करके नहीं दे रही हो, ये आपका दूसरा दोष है। ले रही हो लेकिन दे नहीं रही हो, ये दूसरा दो दोष यहां इस श्लोक में, दो पृथ्वी के दोष पृथु महाराज बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद इस श्लोक का पढ़िए। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया। उत्तर दिया का मतलब पृथ्वी ने कहा मैंने कौन सा पाप किया है, और पृथ्वी ने कहा मैंने कौन सा पाप किया है, मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं अवध्य हूं, मैं स्त्री हूं, हाँ, मैं गाय हूं, तो मुझे मत मारो। तो वह उत्तर देते हैं, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। मेरी आज्ञा और नियम का मतलब है कौन सा नियम? यज्ञ में भाग लेती हो और वापस में उत्पादन नहीं करती हो, ये अब दूसरा। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, अपना भाग ले लिया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया है, इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। सो दो कारण यहां पृथु महाराज बताते हैं। आगे कहेंगे तुम हरी घास तो रोज खाती हो लेकिन दूध नहीं देती हो, ऐसे क्यों? भोजन तो खाती हो, दूध नहीं देती हो। इसके बाद वाले श्लोक में पृथु महाराज और कुछ कारण बताएंगे, और क्रोधित होके मारने के लिए जब उत्तेजित हो गए तब पृथ्वी फिर दोबारा प्रार्थना करेगी। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य लिखते, गोरू पृथ्वी ने कहा कि वो न केवल स्त्री है वरना निर्दोष और निष्पाप भी है। तो स्त्री ने, पृथ्वी ने दो कारण बताया था। पहले तो मैं स्त्री हूं, गऊ हूं, तो स्त्री को नहीं मारना चाहिए, अपराध भी हो जाए तो स्त्री अवध्य है, ये नियम है शास्त्र का। सामान्य शास्त्र का नियम ये है कि नारी अवध्य है, जैसे ब्राह्मण अवध्य होता है, तो अपराध भी हो तो उसको नहीं मारना चाहिए, ये एक सामान्य नीति शास्त्र का नियम है। और पृथ्वी ने उस नियम का पृथु महाराज को बताया कि ये नियम है, आप मुझे नहीं मार सकते हैं। पहला तो ये बताया, फिर बताया मेरा दोष कोई नहीं है, मैंने पाप कोई नहीं किया है, तो स्त्री को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, ये एक प्रश्न है। वध्य ब्राह्मण वध्य है कि नहीं वध्य है, ये ऐसा भागवत में हमको मिलता है। जब अश्वत्थामा को मारने की बात आती है तब उधर क्या नियम लगाया जाता है, ऐसे स्त्री को मारा जाए कि नहीं मारा जाए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं स्त्री अपराध भी करे तो वो उसको क्षमा किया जाता है क्योंकि उसको मारना नहीं चाहिए, ये नियम है। तो यहाँ पृथु महाराज क्यों गाय के रूप में मारना चाहते हैं, ये प्रश्न है। राम के अवतार में भगवान रामचंद्र को पहला वध किसका करना पड़ा, ताड़का का, जो स्त्री के रूप में थी। और रामचंद्र बहुत ही हिचक रहे थे कि नहीं मारना चाहिए, स्त्री को कैसे मारा जाएगा। तब विश्वामित्र ने कहा ये वध्य है, ये असुर है, ये जनहित के लिए है। और फिर उदाहरण भी दिए थे, इंद्र ने भी एक स्त्री का वध किया था और भगवान विष्णु ने भी एक स्त्री का वध किया था, ये दो उदाहरण भी वहां रामायण में दिए हुए। और भगवान श्री कृष्ण ने पहले किसका वध किया, पूतना का। ये दोनों अविद्या के रूप में जब आई तो कहां वध्य है कहां वध्य नहीं है स्त्री, तो यहां गाय ने कहा मैं वध्य नहीं हूं। आगे एक ऐसा श्लोक में तात्पर्य आएगा वो थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। पृथु महाराज कहते तुम अगर अन्न का उत्पादन नहीं करोगी ना उत्पादन, तो मैं आपके शरीर के टुकड़े 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 करके इतने दाने जितने और मेरी प्रजा को खिला दूंगा। तो प्रभुपाद ने उसके लिखा ऊपर लिखा है कि ऐसी स्थितियों में मांस को कब खाया जाए, क्यों खाया जाए, उसका कारण लिखा है कि ये गाय वध्य कब और कैसे हो गई। तो एक ऐसा तात्पर्य इसमें आएगा, वो बहुत गंभीर विषय है। तो ऐसी स्थितियां कभी खड़ी होती हैं जहां जीना मुश्किल पड़ जाता है, तो फिर किसी को भी कुछ भी भक्ष्य किया जा सकता है, ये एक स्थिति इसमें आगे आएगी। तो स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा उसका संरक्षण करना चाहिए, उसकी सुरक्षा का भार हमारे ऊपर है वो करना चाहिए। लेकिन कौन सी स्थिति में पृथ्वी का वध किया जाता है, जब बच्चों को नहीं पालती है, यहां ऐसे लगता है जब बच्चों को नहीं पालती है तो वो वध्य के लायक वध्य करने योग्य। बच्चों का पालन अगर नहीं करे, ये बात कहते हुए हमको आश्चर्य लगता है कि धरती के ऊपर दो ही सबसे महत्वपूर्ण रत्न हैं। रत्न का मतलब जो बहुत बहुमूल्य हैं, जिसके लिए बहुत आदर होना चाहिए। पुरानी संस्कृति में दो चीजों को रत्न बोला जाता था, दूध और पूत। क्या? दूध और पूत। गाय दूध देती थी और स्त्री पूत देती थी, दोनों को बच्चे और गाय का दूध, ये बहुत बड़ा धन माना जाता था। और अब दुर्भाग्य से इन दोनों की कहीं भी किसी घर में आवश्यकता ही नहीं है, किसी को इसकी जरूरत ही नहीं है, ना किसी घर में गाय है ना ही कोई बच्चा पैदा करना चाहता है। तो दोनों खा पी रहे हैं, ना बच्चा पैदा कर रहे हैं ना गाय पालन कर रहे हैं, तो सारे ही वध्य हैं। पृथु महाराज आए तो सबका समाप्त कर देना चाहिए, दोनों काम छोड़ दिया। किसी घर में ना गाय है तो ये कंगाल से ज्यादा है, किसी घर में गाय तो है नहीं, और किसी घर में बच्चा पैदा, पहले बच्चे पैदा होते थे खुश होते थे, अब बच्चा नहीं हो तो खुश होते हैं लोग। एक तो ऐसी चाल चल पड़ी है, उसको कहते हैं डबल इनकम नो किड्स, इसको बोलते हैं डिंक फैमिली। डबल इनकम DI, दो कमाई कोई बच्चा नहीं, ये ऐसे मूर्ख बहुत से लोग कहते हैं कि स्त्री हो पुरुष हो दोनों कमाए और फिर घूमो फिरो, बच्चे मत पैदा करो, पढ़ाई का खर्चा कौन भरेगा, पालन पोषण कौन करेगा। उससे पूछो कि तेरी माँ ने तेरे को नहीं पैदा किया होता तू कहाँ का उल्लू का पट्टा कहाँ से आता। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है इस पृथ्वी के ऊपर कि जिन दो चीजों को शास्त्र ने बहुत बड़ा सम्मान दे के और जिसके कारण गृहस्थी का बड़ा सम्मान हुआ करता था, माता का बड़ा सम्मान हुआ करता था द्विवेदों में, इन दोनों चीजों को कलयुग के प्रभाव से हमने अपनी संस्कृति से ही निकाल दिया है। घर में गाय है नहीं किसी के, गांव में बेचारों के पास है भगवान उनको, और घर में बच्चे का पैदा करना तो मुश्किल हो गया, चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं, इतना खर्चा बढ़ गया है। अरे हर एक अपना भाग्य साथ लेता लेके आता है, न कोई संख्या बढ़ती है। तो ये दो चीजें बहुत बड़ा गंभीर पाप, घिनौना पाप पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, गौ हत्या और जन्म से पहले बच्चे की हत्या। ये दुनिया के अंदर दो बड़े से बड़े पाप हो रहे हैं, इसलिए दुनिया में कहीं न सुख है न शांति है, और कहीं कोई लोग कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर ही नहीं सकता है जब तक ये दो घिनौने पाप नाश नहीं हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सब वध्य हैं, ये स्थिति यहां पृथु महाराज बताएं, अगर ऐसे किया जा रहा है तो फिर ये सब वध्य है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि स्त्री को वध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बच्चे ही नहीं पैदा करने तो फिर क्या जरूरत, क्या भोग की सामग्री तो नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, गाय दूध नहीं दे तो क्या जरूरत है, फिर मां बच्चों का पालन नहीं करे तो उसकी जरूरत, बच्चे ही नहीं है तो फिर मां की जरूरत क्या है। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, और ये पूरे विश्व का इस वक्त विश्व के अंदर जो भी अपराध हो रहे हैं उसका एक ही कारण ये दो चीजें हैं जिनको लोगों ने भुला दिया। और दो दो चीजें भूली क्यों है, क्योंकि आध्यात्मिकता का इतना अभाव हो गया है कि कोई ये काम करने को तैयार नहीं है। ये काम करना बहुत जरूरी है, इस काम के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा, संस्कृति की सुरक्षा के लिए ये दोनों चीजें जरूरी है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः पृथ्वी ने, उसने तर्क किया कि उसका वध नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मैं स्त्री हूं और मैं निर्दोष हूं। साथ ही उसने यह भी संकेत किया कि राजा धर्मज्ञ होता है, अतः उसे धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जो स्त्री वध को वर्जित बताते हैं। धर्म के नियम कहते हैं कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। तो आप राजा हो के मैं गऊ और स्त्री दोनों हूं, मेरा वध क्यों कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के प्रसंग में जब कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ तब पहले यह कहा गया कि स्त्री है इसका वध नहीं करना चाहिए, यह नियम बताया। फिर यह कहा यह आपकी बहन भी है, स्त्री भी है और नव विवाहित भी है, अब तो यह वध है ही नहीं। लेकिन उस वक्त तो कंस इस बात को नहीं समझा, लेकिन जब श्री कृष्ण मां देवकी के हृदय में आ गए वसुदेव के हृदय से, उस वक्त कंस ने देखा कि ये चमक रही है, ये बड़ी खुश दिख रही है, हमेशा तो ये डरती रहती है, आज ये प्रफुल्लित क्यों है, लगता है मुझे मारने वाला इसके उदर में आ गया है। और तब कहता है इसको मार देना चाहिए, फिर कहता नहीं स्त्री अवध्य है, अब कंस भी कहता है स्त्री अवध्य है, इसको नहीं मारना चाहिए, एक तो स्त्री है और दूसरा गर्भवती है, इसको बड़ा महापाप है, कभी नहीं मारना चाहिए, देखा जाएगा जब जब बच्चा होगा तब मारेंगे। तो भगवान उसके जैसे ही हृदय में आए कंस का मन बदल गया, उसने मारने का विचार नहीं किया, वो भी नेम को समझ गया कि स्त्री अवध्य है, स्त्री गर्भवती को तो मारना ही नहीं चाहिए, उसकी सुरक्षा करना बहुत बड़ा दायित्व है। प्रभुपाद जी के प्रचार के समय एक गर्भवती स्त्री भक्त बनने के लिए आई, प्रभुपाद ने देख के कहा, जैसे बच्ची अपनी बेटी मानते, शिष्य लड़का है तो बेटे के समान है और लड़की है तो बेटी के समान है, ये नियम है, ये शास्त्र का नियम है, शिष्य और पुत्र में कोई अंतर नहीं है, राजा के लिए भी प्रजा पुत्र के समान है, प्रजा का मतलब ही पुत्र होता है, तो दोनों। तो प्रभुपाद ने पूछा आपका पति कहाँ है, तो बेचारी ने सर नीचे करके आंसू आंखों में लेके कहा कि मुझे छोड़ के चला गया। तो प्रभुपाद जी बहुत दुखी हुए कि स्त्री गर्भवती को पति छोड़ के चला गया, कितना नालायक है, कितना अधम है, अधम है, इसका कौन संरक्षण करेगा, इसका पालन कौन करेगा। उस दिन उस जो उस वक्त बैठे थे भक्त उनके बीच में प्रभुपाद ने ऐसे घोषणा की कि इसके साथ कोई आप में से विवाह करेगा। और प्रभुपाद ने इसने भाव से कहा कि इस लड़की का संरक्षण होना चाहिए। एक भक्त ने उससे विवाह कर लिया और उसको पालन किया और उसके बच्चे का भी पालन किया। अब प्रभुपाद जी का कितना गर्भवती स्त्री के प्रति जो शिष्य बनने आई थी कितना उनका उदार भाव था और कितना उनकी इस करुणा को देखें कि ऐसा इतिहास में होना संभव नहीं है, लोगों की मानसिकता में ये होना संभव नहीं है, लेकिन प्रभुपाद के लीलाओं के अंतर्गत एक ये अद्भुत लीला घटित हुई और वो एक एक भक्त ने उसको स्वीकार किया क्योंकि गुरु महाराज आदेश कर रहे हैं कि इस स्त्री ये भक्त है, इसका संरक्षण जरूरी है। तो उस बेचारे ने वो काम अपने उसने उस स्त्री को स्वीकार कर लिया पत्नी के रूप में। तो गर्भवती स्त्री का सम्मान करना, वो माँ बनने वाली है और माँ पूजनीय है, माँ सबके लिए पूजनीय होती है। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को ठीक तरह से प्रचारित करने की ज़रूरत है स्त्री की। ये बात फिर भी प्रभुपाद जी के शिक्षाओं में आती है कि पांच विशेष व्यक्तियों का अथवा पांच विशेष व्यक्तियों का अगर संरक्षण नहीं है समाज के अंदर तो वो समाज नाश हो जाएगा, नष्ट के रास्ते पे चल रहा है। उसमें पहला ही सीधा है स्त्री। स्त्री का अगर संरक्षण नहीं है, स्त्री का अगर सम्मान नहीं है समाज के अंदर, उसका शोषण हो रहा है और उससे पाप कर्म कराया जा रहा है, तो फिर वो समाज नष्ट हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति है बालक। बच्चों को अगर ठीक शिक्षा नहीं दी जा रही है, आध्यात्मिक अभाव में बच्चे केवल भोग के शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो वो बच्चे भविष्य के अंदर बहुत बड़े आतिताई होंगे और बहुत बड़े वर्ण शंकर होंगे और उनके कारण संसार में दुखी दुख होगा। तो बच्चों को ठीक शिक्षा देना चाहिए। और तीसरा कहा गाय की रक्षा करना चाहिए। अगर गाय की रक्षा नहीं होगी समाज में तो धार्मिक प्रक्रियाएं सारी लुप्त हो जाएंगी। गाय बहुत दया की मूर्ति है, तो गाय का पालन पोषण ये तीसरा मुख्य अंग है। और चौथा मुख्य अंग है वृद्ध जो 60 से ऊपर हो जाते हैं, जो वानप्रस्थ में जाने के लिए उनको घर से तो बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन उनके लिए व्यवस्था ठीक अगर नहीं है समाज में, उनको अगर भगवत नाम जप के उनको रहना खाने का व्यवस्था नहीं है ठीक, तो फिर वो समाज बड़ों का जो मान नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, उस समाज के भी नाश होने में देर नहीं लगेगी। और पांचवा ब्राह्मणी कल ब्राह्मण समाज का ब्राह्मण जो व्यक्ति ब्राह्मणी की गुणों से संपन्न है, उनका आदर करके उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनको ठीक तरह से सम्मानित रखना चाहिए। ये अगर नहीं है तो भी समाज नष्ट हो जाएगा। और देखेंगे तो ये चारों चीजों का अपमान चारों ओर हो रहा है। चारों ओर गौ की रक्षा नहीं हो रही है, वृद्धों का पालन पोषण नहीं हो रहा है, बच्चों की शिक्षा आधुनिक केवल भोग के मार्ग के ऊपर चल रही है, कहीं आध्यात्मिक शिक्षा का वर्णन नहीं मिल रहा है। स्त्री के स्वतंत्रता के नाम में विश्व भर में वर्ण शंकर चारों ओर से बढ़ रहे हैं। तो ये सारी स्थिति पूरे विश्व की खराब है और किसी तरीके से इस्कान बहुत बड़ी परशक्त शक्तिशाली संस्था है, इसको इन पांच चीजों के संरक्षण का बहुत बड़ा दायित्व निभाना पड़ेगा। अगर ये नहीं निभा पाएंगे, पृथु महाराज से ये सीखना चाहिए कि ये सब अपनी प्रजा के पालन तो राजा को करना चाहिए। असल जरूरत तो इस चीज की है कि हमारे को एक बहुत अच्छी अपनी एक समाज बनाना चाहिए, भक्त समाज, जिसके अंदर ये सब चीजें ठीक तरह से करनी चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो बच्चे हमारे बच्चे भी तो इसी संसार के इसी रास्ते पे चल ही रहे हैं ना, तो होगा क्या, तो कोई लाभ तो होना नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को नहीं समझ के ऐसे हम ठीक है, अरे कृष्णा जप रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम समाज में कोई विशेष ऐसा कार्य करके जाएं। प्रभुपाद जी ने शुरू में 67, 8, 9 में गौशाला खोल दी, गुरुकुलें खोल दी, बहुत बड़ा प्रयास किया इन सब चीज़ों को स्थापित करने का, लेकिन हम उसको चला भी नहीं पा रहे। कारण क्या है ये हमको ढूंढना चाहिए और ये बहुत बड़ा विषय है। पृथ्वी महाराज सबसे अच्छा शासक है, राम राज्य का नाम चलता है राम जी के शासन का, तो एक एक उदाहरण है। लेकिन पृथ्वी महाराज बहुत अद्भुत एक राजा हुए हैं, राजपाट चलाया, प्रजा को सुख दिया, पृथ्वी को समतल किया। पृथ्वी कहेगी एक तो ये करो मेरे से दोहन करो और दूसरा मेरे को सीधा कर दो, ताकि बरसात जब होती है तो मेरा पानी सब जगह जाए तो अन्न का उत्पादन हो, अच्छा उत्पादन होगा, ये पृथ्वी ने प्रार्थना की थी। तो पृथ्वी महाराज वर्णाश्रम की व्यवस्था पृथ्वी महाराज ने की, ब्राह्मण शिक्षा के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वैश्य गौ रक्षा के द्वारा, वाणिज्य के द्वारा, कृषि के द्वारा और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा के द्वारा अपना निर्वाह करे, ये पृथ्वी महाराज ने इस धरती के। और एक समय के ऊपर पृथ्वी महाराज ने राजपाट को अपने पुत्रों को देके और पृथ्वी महाराज ने वानप्रस्थ भी लिया। और पृथ्वी महाराज जब वानप्रस्थ में गए तो वन को बहुत इतना सुंदर देखा कि इतनी अच्छी व्यवस्था किसने की है। तब पृथ्वी महाराज को इनका अपना उसी वेण के पांव से उत्पन्न हुआ निषाद मिला, जो वन प्रदेश का राजा बना। उसने पृथ्वी महाराज के राज में वन को बहुत सुंदर बना के रखा और जहाँ पृथ्वी महाराज रहते थे वहाँ फल फूल और हर चीज बहुत सुंदर। तब उसने देखा कि वो भी पृथ्वी महाराज की सेवा करके निषाद होते हुए भी उसने ये बहुत अच्छा काम किया जो वेण के पांव के मंथन से निकला था। इसलिए निषाद भी जब भगवान का दर्शन कर लेते हैं तो उनके अंदर पाप की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। भगवान श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण जब चित्रकूट में रहते थे और जब भरत उनको मनाने के लिए वहाँ पहुँचने वाला था, उस वक्त रास्ते में निषाद लोग जो कोल भील लोग जंगल में रहने वाले थे वो आके दोनों के अंदर फल फूल लाके उनको देने लगे अयोध्या वासियों को कि आप ये पाइए। तो वो उनको देख रहे, बोला आप देखो मत, हम यहाँ पहले हमारा काम था लोगों को लूटना, हम तो हैं ही जंगल में रहने वाले निषाद हैं, हम तो जाने वाले को लूटते हैं और अब जब से श्री रामचंद्र यहाँ आए हैं उनका दर्शन और उनका सत्संग हुआ है हमारी सारी काया पलट हो गई है। हमारे लूटने को तो लूटना तो हमें भूल गया, अब जो आता है उसको हम ला के दे रहे हैं, हमारा जीवन ही बदल गया है। तो हम केवल भगवान के संग से हमें सेवा का भाव आ गया है और जो पहले लूट के भोग का भाव था वो समाप्त हो गया है। तो साधुओं की संग से, प्रभुपाद जी के संग से कितने लोग जो नशा करने वाले, पाप करने वाले, अपराध करने वाले, उन लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया कि वो एक साधु के संग से उनका जीवन साधुत्व का बन गया। इसलिए कहते हैं पारस और संत में बहुत बड़ा अंतर होता है। पारस लोहे को छुएगा तो लोहे को सोना बना देगा, लेकिन संत किसी को देखेगा तो संत बना देगा। तो पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता है, सोना ही बना सकता है, लेकिन संत साधु किसी को देखेगा तो उसको साधु बना देगा। तो प्रभुपाद जी ने कितने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। तो जीवन में साधुत्व होना चाहिए, साधु तो सबसे अच्छा संसार का कल्याणकारी कार्य है। तो ये इस्कान की स्थापना असल में साधुत्व के लिए है, साधु समाज के स्थापना करने की जरूरत है। तो गौ माता ने जब ये कहा कि आप राजा हैं, आप राजनीति को जानते हैं, आप धर्म को जानते हैं, आपको मालूम है कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, तो उत्तर में महाराज पृथ्वी ने कहा कि पहली बात तो ये है कि पृथ्वी तुमने उसके मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। पहले तो मैं राजा हूं और मैं भूपाल कहते हैं, राजा का एक नाम भूपाल है, भू का मतलब पृथ्वी और उसका पालन करने वाला, तो राजा हूं मैं। दूसरे को क्या कह, राजा के लिए कितने कितने नाम है, पृथ्वी और राजा के पृथ्वीपति भी कहते, राजा को पृथ्वीपति भी कहते। तो आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। जैसे इसको ऐसे कभी देखे, यमुना जी को ब्रह्मा बलराम जी ने आदेश दिया कि इधर आ जाओ, मैं जल करना करना, तो उसने कहा मैं नहीं आ रही हूं, तो बलराम जी उसके ऊपर क्रोधित हुए कि नहीं हुए। तो ये ऐसे ही जैसे कोई राजा है, और ये तो राजा भी सामान्य राजा नहीं है, ये भगवान का शक्ति अवेश अवतार है, तो उसका आदेश का पालन नहीं करना अपराध है। इसको ऐसे मान लें कि धर्म क्या है, भगवान के, भगवान राजा के रूप में धर्म को कानून के रूप में देते हैं, संविधान है धर्म भगवान का, जो इसका पालन नहीं करता है वो अपराधी है, जो धर्म के ऊपर नहीं चलता है वो भी अपराध ही कर रहे हैं। तो यहां आपने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, ये आपका पहला अपराध है, ये उसका पहला अपराध है, आपने ये पहला अपराध किया है। दूसरा ये कि वो कि पृथ्वी आप अपने यज्ञ का भाग तो ले रही हो, प्रभुपाद लिखते हैं वो अपना यज्ञ भाग ग्रहण करती रही, किंतु बदले में उसने पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया, ये उसका दूसरा अपराध है। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। इसके आगे पृथु महाराज और 5-7 श्लोकों में पृथ्वी को उसके इसके दोष बताएंगे, तब फिर पृथ्वी बोलना शुरू करेगी। हाँ, धरोवाच, फिर पृथ्वी उत्तर देगी, तब भी पृथु महाराज शांत नहीं होंगे, तब दूसरे अध्याय शुरू होते ही पृथ्वी पृथु महाराज को कहेगी कि नहीं, आप मेरा वध नहीं कीजिए, आप मुझसे सब प्रजा के लिए आवश्यक चीजें प्राप्त कर लीजिए। तो आज के श्लोक से हमको सीखने को क्या मिलता है, क्या सीखने को मिलता है हमको? पांच व्यक्ति को ठीक से रखेंगे तो संसार में अच्छा समाज स्थापित होगा। अच्छा, माता को बच्चे होने चाहिए और बच्चों को पालन करना चाहिए, नहीं पालन करेगी तो वो स्त्रियां फिर जीने के अधिकारी नहीं है, खाना खा रही हैं, बच्चे नहीं दे रही हैं, स्त्रियां हैं, विवाह किया है तो बड़ी अपराध कर रही हैं, ये दिख रहा है यहां से, घास खा रही है, दूध नहीं दे रही है, ये लिखा है इसके बाद में, तो ये बहुत बड़ा भारी काम है और ये इतना बड़ा अपराध है, इसको रोका भी नहीं जा सकता। इस वक्त ऐसा वातावरण खराब हो चुका है, कलयुग का इतना बड़ा भयंकर प्रभाव है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अब इसको कैसे सुधारेंगे, ये यही एक कारण है, कितने भी प्रयास करो इस धरती के ऊपर सुख शांति हो ही नहीं सकती जब तक गौवध और जन्म से पहले बच्चों के वध के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। पृथु महाराज की तरह उनको मार देने का जब तक दंड नहीं दिया जाएगा तब तक कहीं भी सुख शांति नहीं हो सकती। ये सीधा सा सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भक्तों को, इसको कैसे ठीक करना है ये आप देख लीजिए। इसके लिए क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी है ये आप विचार कर लीजिए। एजुकेशन मुफ्त कर दो, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए जैसे पहले गुरुकुलों में होती थी, पहले के जो जो पढ़ाने वाला है गुरुजी है उसका काम है बच्चों को कपड़े देना, खाना खिलाना, पुस्तक देना, माता पिता को केवल 5 साल का बच्चा गुरुजी के पास पहुंचा देना है, बस आपका काम खत्म। तो एक तो परेशानी आजकल की है कि बच्चों की पढ़ाई महंगी है इसलिए बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए हमारे को ऐसी शिक्षा की पद्धति चलानी चाहिए जिसके अंदर माता पिता के ऊपर बच्चे के पढ़ाने का खर्चा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, लड़कियों के शादी के ऊपर जो बेकार का खर्चा है इसको खत्म कर देना चाहिए, मंदिर के अंदर भगवान के सामने वचन करके और लड़का लड़की की शादी करके और मंदिर के तरफ से ही प्रसाद खिला के रवाना करना चाहिए, ये खर्चा कम कर देना चाहिए। हाँ, तो क्या है कि किसी को बच्चे को खर्चे से बच जाएंगे तो बच्चों को पैदा करने में उनको भय नहीं होगा। नहीं, आपको कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, जिस व्यवस्था से आपको, जिस कारण से बच्चे नहीं चाहिए वो कारण पहले निवारण करना चाहिए ना। और हमको तो बहुत जरूरत है इधर भक्त बनाने के लिए, कितने पापड़ बेल रहे हैं, एक भक्त बनता नहीं है। एक बच्चा उसको भक्त बनाए तो माता पिता तो दक्ष की तरह सबको शराब देते रहते हैं कि हमारे बच्चे को भक्त बना दिया, और दो बच्चे पैदा नहीं करते, अब करें क्या। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब इसका समाधान क्या है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, जो अभी 50 साल से छोटे हैं उनको हम कहते हैं आप कुछ सोचो, हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं करोगे तो कहीं भी सुख शांति और जो प्रभुपाद की इच्छा है कि इस धरती के ऊपर वर्ण आश्रम की व्यवस्था हो, वो हो नहीं पाएगी। आपको कुछ सोचना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे काम करने से आगे बढ़ेंगे नहीं हम, तो ये बात काम करनी पड़ेगी। कम से कम जो भक्त है और विवाह कर रहा है वो तो संकल्प करके करे कि मेरे को 5 बच्चे पैदा करने हैं, 4 संस्था को देने हैं, 1 मेरे लिए, और मैं बच्चे मेरे संस्था पालेगी और मैं मंदिर की गायों को पालूंगी। तो मन घर में जगह नहीं है फ्लैट में गाय बांधने की, यहाँ बांध के जाओ, उसका खिलाया पिलाया करो, दूध यहाँ से ले जाया करो, कुछ करो, कुछ अपनी तरफ से विचार करो कि हम गाय दूध के लिए गाय की और बच्चों की कैसे संरक्षण करेंगे। तो फिर ऐसे बच्चे जब आपके भक्त बनेंगे, तब आप बूढ़े बनेंगे तो आपको अच्छी तरह से मंदिर में रखेंगे, प्रसाद भी खिलाएंगे, राम नाम जपने का सो अवसर देंगे, तब आप प्रेम से यहाँ रह सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा फिर तो मायापुर वृंदावन बनाया ही इसके लिए है कि आप यहीं आके रहना, तो आपके लिए व्यवस्था करने के लिए ऐसे बच्चे होने चाहिए ना। तो ये तो 5 काम हो जाएंगे फिर। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? श्री प्रभुपाद की जय।
अच्छे नहीं, पहले तो ठीक है।